कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पुराने नियम में पाई जाने वाली पुस्तक रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। प्रभु की आशीषों को यूं ही प्राप्त करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सत्यवचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोताओं का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, और हमने देखा था कि बोआज रूत से प्रेम करने लगा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। मेरे प्रियो, फिर मैं पूछता हूँ, क्या बोआज रूत में रुचि रखता था? वह तो उसका प्रेमी पुजारी हो गया था और यथा संभव प्रयास करके उसे पत्नी बनाना चाहता होगा। अब उसके मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। आइए हम देखते हैं रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 15 और 16 पद में लिखा है, जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में ही बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। ध्यान दीजिए, बोआज अपने कर्मियों से कहता है कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, उसके साथ सदाचार निभाओ। सिली बीनने अर्थात बचे कुचे अनाज को बीनने वाले स्वभाव से ही अच्छे अन्न को उठाने की मंशा रखते थे, और खेत के स्वामी को उन्हें लवनी करने वालों के पीछे रखना होता था, परंतु यहाँ बोआज कहता है कि उसे लवनी के मध्य से भी सिला बीनने दिया जाए। बोआज व्यवस्था का ज्ञाता था, वह जानता था कि व्यवस्था में लिखा है कि यदि पूला गलती से गिर जाए तो उसे उठाना नहीं है। बोआज एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि वे जानबूझकर भी बाले गिराते जाएं। यदि वह कहे आपकी बाले गिर रही है तो कहना कि अब आप पीछे लौटकर उसे उठा नहीं सकते, अतः वह उसे अपने लिए उठा ले। मित्रों, हम देखते हैं रूत की पुस्तक 2 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका और वह कई एपा भर जौ निकला। एक एपा की कीमत एक दिन की मजदूरी के लिए बहुत थी, विशेष करके रूत के लिए। तब हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय के 18 और 19 पद में पढ़ते हैं, तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। मेरे प्रियो, जब रूत अन्न के साथ घर लौटी तब नाव में आश्चर्यचकित हो गई और रूत से पूछा, मैंने आज तक किसी को इतना अधिक सिला उठाते नहीं देखा है, तू आज किसके खेत में थी? रूत ने दिन भर की घटना नौमी को कह सुनाई। रूत अभी नहीं समझ पाई थी कि बोआज वास्तव में था कौन, परंतु नौमी जानती थी। हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, नौमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नौमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। मित्रों, ध्यान दीजिए, कुटुंबी छुड़ाने हारे की व्यवस्था हमारे लिए अति विचित्र है, क्योंकि हमारे विधि विधान में इसके तुले कोई नियम नहीं है। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी जो उसने अपनी प्रजा को संभालने के लिए बनाई थी। परमेश्वर ने भूमि और मनुष्य दोनों ही के लिए व्यवस्था दी थी। मूसा की व्यवस्था उन लोगों के लिए और उनकी भूमि के लिए अति उत्तम प्रावधान था। मेरे मित्रों, रूत निश्चय ही सही खेत में पहुंची, क्योंकि बोआज उनका निकट कुटुंबी था। रूत की पुस्तक में हम कुटुंबी छुड़ाने हारे का नियम क्रियाशील होते हुए देखते हैं। आप इसराइल में मूसा की व्यवस्था की प्रासंगिकता नहीं देखते हैं, परंतु इस पुस्तक में कुटुंबी छुड़ाने हारे का नियम और अन्य 2 नियम जो हमने देखे हैं प्रभावी दिखाए गए हैं। ये बड़े विचित्र नियम हैं। परमेश्वर ने गरीबों के लिए प्रबंध किया था कि खेत में और दाख की बारी में फसल उतारते समय या फसल काटते समय सब कुछ न उठाया जाए, अपितु गरीब परदेशी विधवाओं के लिए कुछ छोड़ दिया जाए। मेरे मित्रों, यह बड़ी ही असामान्य रीति थी। उन्हें फसल काटते समय लौटना नहीं था, अर्थात कुछ छूट जाए तो पीछे लौट करके उसे उठाना नहीं था। मित्रों, रूत की कहानी में हम कुटुंबी छुड़ाने हारे का नियम देखते हैं, जो लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 25 में दिया गया है। मेरे मित्रों, बोआज नवोमी के पति एलीमेलेक अर्थात मेरा परमेश्वर राजा है का संबंधी था। मेरे विचार में एलीमेलेक और बोआज के पिता भाई थे, अतः वे दोनों चचेरे भाई थे। इसलिए नवोमी ने रूत से कहा कि वह उनका निकट संबंधी था। इस नियम पर यहाँ बल दिया गया है और इसका अर्थ क्या है, आइए हम इसे भूमि के संबंध में देखें। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। अब परमेश्वर यह काम कैसे करेगा, देखिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय के 25 पद में लिखा है, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निजी भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो उसके सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। मित्रों, यह भूमि के संबंध में कुटुंबी छुड़ाने हारे का नियम था, अर्थात कोई रिश्तेदार या कुटुंबी उस भूमि को छुड़ा सकता था। आइए हम इसे व्यवहारिकता में देखें। जब इसराइल वहां आया था तो वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का देश था और उनका उस पर अधिकार तब तक ही था जब तक वे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहे। उन्होंने परमेश्वर से विश्वासघात किया तो परमेश्वर ने उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने उनसे कहा, यह भूमि मेरी है और मैं सदा के लिए इसे देता हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें मालिकाना अधिकार दिया और उनके पास वह अधिकार आज भी है। परमेश्वर ने वह संपूर्ण देश उनके गोत्रों में बांट दिया। कुछ बाइबल पुस्तकों के अंत में मानचित्र दिए गए हैं, वहां आप भूमि का बंटवारा देख सकते हैं। अब हर एक गोत्र में प्रत्येक कुल का अपना अपना भूभाग था। अब यदि किसी की भूमि में लगातार 2-3 वर्ष अच्छी फसल ना आए तो स्वाभाविक है कि वह कंगाल हो जाएगा। अकाल का कारण भी परमेश्वर के प्रति उनकी अनिष्ठा थी। अब वह क्या करेगा, वह अपनी भूमि को बेच डालेगा। जिसके पास पैसा है वह उसकी भूमि को खरीद लेगा, परंतु केवल 50 वर्ष के लिए, क्योंकि जुबली वर्ष में भूमि उसके स्वामी के पास पुनः आ जाएगी। इस व्यवस्था के द्वारा भूमि परिवार में ही रहती थी, परंतु जुबली वर्ष बहुत लंबे समय के बाद आता था और अति संभव था कि जुबली वर्ष के आते आते अधेड़ मनुष्य जीवित ही न रहे, तो उसके पुत्र को वह भूमि प्राप्त होती थी। अब उस व्यक्ति का कोई समृद्ध संबंधी चचेरा भाई और वह उसकी सहायता करना चाहता है तो वह आकर ऋण चुका दे और जुबली वर्ष के पूर्व अपने भाई को उसकी भूमि दिलवा दे। अब जुबली वर्ष में इस संबंधी को मुक्ति धन का भुगतान किया जाएगा। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी। ऐसा मुक्तिदाता भाई या चाचा होना तो बड़े सौभाग्य की बात है या नहीं? जी हाँ, यह व्यवस्था भूमि से ही संबंधित नहीं थी, यह व्यवस्था मनुष्यों से भी संबंधित थी। देखिए लय व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 25 उसके 47 और 48 पद में लिखा है, फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है। जी हाँ, यदि किसी की परिस्थिति ऐसी बुरी हो कि वह अपनी भूमि गिरवी रखने के बाद भी किसी कारणवश परिवार का व्यय नहीं उठा पा रहा है और उसे विवश होकर स्वयं को दासत्व में बेचना पड़े और जुबली वर्ष मानो 49 वर्ष बाद आएगा, तो संभवतः वह दासत्व में ही मर जाएगा। परंतु यदि उसका चाचा या चचेरा भाई आकर और कहे कि वह अपने भतीजे या भाई को दास देखना नहीं चाहता, वह उसकी कीमत चुका देता है, तो वह दास स्वतंत्र हो गया, क्योंकि उसके चाचा या भाई ने उसे छुड़ा लिया है, अब वह स्वतंत्र है। मेरे मित्रों, कुटुंबी छुड़ाने हारा या छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। मसीह हमारा कुटुंबी छुड़ाने हारा है। यही कारण है कि नए नियम में मुक्ति शब्द काम में लिया गया है, न कि मेल कराना, क्योंकि मेल कराने में पाप ढांके जाते हैं। मित्रों, मुक्ति का अर्थ है कि धन देकर छुड़ाना। जिससे कि मुक्ति प्राप्त स्वतंत्र हो जाए। मसीह हमारी मुक्ति के लिए ही नहीं, इस पृथ्वी की मुक्ति के लिए भी मरा था। हमारी यह पृथ्वी एक दिन भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएगी और नया आकाश तथा नई पृथ्वी प्रकट होंगे। यह मसीह की मुक्ति है। मेरे प्रियो, बाइबल में कुटुंबी मुक्तिदाता का एकमात्र उदाहरण बोअज है। यही कारण है कि रूत की पुस्तक पर लिखा हुआ यह मुक्ति का प्रेम पक्ष प्रकट करता है। यहाँ एक कुटुंबी छुड़ाने हारा है, परंतु उसे क्षमता में कम नहीं करना है। हम देखेंगे कि बोअज से पहले एक और निकट कुटुंबी है, परंतु वह पीछे हट जाता है। उसे रूत की चिंता नहीं थी, परंतु बोअज उससे प्रेम करता था। यही तो अंतर है। आवश्यक नहीं था कि परमेश्वर हमें मुक्ति दिलाता, क्योंकि हम तो भटके हुए पापी थे। वह तो तब भी पवित्र और न्यायी परमेश्वर ही रहता, परंतु वह हमसे प्रेम करता था। अतः आपने देखा कि मुक्ति द्वारा उद्धार एक प्रेम कथा है, जो यहाँ साधारण शब्दों में प्रकट की गई है, जिसके पात्र मोआबी लड़की और इसराइल का बोअज है। आइए हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 21 से 23 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके, तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नौमी ने अपने बहु रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। मेरे मित्रों, कटनी पूरी करने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा, और 6 सप्ताह आप प्रतिदिन दोपहर को बैतलहम में ज्योतिषी नहीं, चरवाहे नहीं, यूसुफ और मरियम नहीं, परंतु बोअज और रूत को देखते हैं। बोअज रूत का प्रेम पुजारी हो गया था, और बैतलहम में अफवाह भी थी, हमारा सबसे योग्य कुंवारा प्रेम जाल में फंस गया। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि नौमी उन्हें साथ साथ आते देखती होगी, और वह जानती थी कि अब कुछ करना होगा। रूत की स्थिति अलग ही थी। बोअज उससे प्रेम करने लगा था और वह उसे छुड़ाना चाहता था। एक प्रेमी उद्धार करता जो अति अद्भुत है, वह 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया कि हमें पापों से छुड़ा ले। मेरे मित्रों, अब कटनी का समय समाप्त होगी, दावनी का समय आ गया है, और यह तो स्पष्ट है कि रूत अपना अधिकार नहीं मांग रही है। इसलिए नौमी को अब परिस्थिति संभालना है। रूत की स्थिति इस समय अत्यधिक असामान्य है, और मेरे विचार में इस अध्याय की घटनाओं को समझने के लिए आवश्यक है कि मूसा की व्यवस्था में तीसरा नियम समझे, जो यहाँ लागू होता है। यह नियम भी हमारे लिए बड़ा ही विचित्र है। 2 ऐसे विचित्र नियम हम पहले देख चुके हैं। मेरे मित्रों, हमें उस युग का दावनी या स्थान या फर्श और उसका महत्व भी समझना आवश्यक है। अब आप यदि सोचें कि जो नियम हमने अब तक देखे हैं वे विचित्र हैं, तो इस नियम को देखें, जिसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 5 से 9 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए, तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले, और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इसराइल में मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना भाए या अच्छा ना लगे, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इसराइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन नहीं करना चाहता है। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसे समझाएं और वह अपनी बात पर अड़ा रहे, तब कहे, मुझे इसे विवाह करना नहीं भावता। तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे विचार में आप स्वीकार करेंगे कि यह एक विचित्र नियम है। जहां तक मैं जानता हूं कि रूत की पुस्तक ही धर्मशास्त्र में इसका उदाहरण देती है, परंतु यह नियम सबसे अधिक लागू हुआ होगा, क्योंकि यह निस्संतान मृतक परिप्रेक्ष्य में लागू होता था। मित्रों, अब यह परिस्थिति देखिए। मान लीजिए कि एप्रेम के पहाड़ी प्रदेश में एक पुरुष रहता है, जिसे आज सामरिया के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अनेक पुत्र हैं। उसका एक पुत्र लालटेन साफ करके रखता है और अंधेरा होने पर उसे जलाता है और सीटी बजाता हुआ सड़क पर चल देता है। उसका एक भाई अन्य भाइयों से कहता है, वह जा कहां रहा है? वे कहते हैं, पता नहीं। बहुत रात बीत जाने पर वह सीटी बजाता हुआ लौटता दिखाई देता है। वह घर में आ जाता है परंतु किसी से कुछ नहीं कहता। वे उससे पूछते तो कुछ नहीं है परंतु अचंभा अवश्य करते हैं। अगली रात वह फिर निकल पड़ता है। उसके भाइयों की उत्सुकता बढ़ती है, अतः प्रातःकाल वे उससे पूछते हैं। अब तीसरी रात जब वह बाहर जाकर लौटता है तब उसके भाई उसके सामने आते हैं और उससे पूछते हैं कि तू कहाँ गया था? ओह, बस वहाँ नीचे गया था। वे कहते हैं, हम जानते हैं कि वहाँ एक नया पड़ोसी आया है। वह कहता है, हाँ आया है। तब दूसरा भाई कहता है कि उनकी एक पुत्री है। तब वह कहता है, हाँ है। वे उससे पूछते हैं, क्या यह सच है कि तू उसके पास गया था? वह जवाब देता है, हाँ मैं उसके पास गया था और अच्छे पड़ोसी होने का प्रयास कर रहा हूँ, इस कारण मैं उनसे भेंट करने गया था। तब वे कहते हैं, हम विशेष करके यह जानना चाहते हैं कि तू उस लड़की से मिलने गया था। वह कहता है, साफ कहूँ मैं उसी से मिलने गया था। तब वे उससे पूछते हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या तू उस लड़की में रुचि रखता है? तब वह कहता है, सच कहूँ तो मैं उसमें रुचि रखता हूँ। तब वे कहते हैं, हमने उस लड़की को ध्यान से देखा है और हमें वह स्वीकार नहीं है। हमारे विचार में हमें पारिवारिक सभा करना है, क्योंकि यदि तुझे कुछ हो गया तो हम में से किसी एक को उससे विवाह करना पड़ेगा। मूसा की व्यवस्था के अनुसार वह उनमें से किसी एक से विवाह करेगी यदि उसके पास संतान नहीं हुई। अब वह कहता है, मैं उससे विवाह करूंगा क्योंकि मैंने आज उससे पूछा था और वह तैयार भी है। और तब वे कहते हैं, हमारे विचार में तुझे डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाना चाहिए कि तू पूर्ण स्वस्थ है या नहीं, क्योंकि हम तो उसे विवाह नहीं करेंगे, हम उसे पसंद नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि यह युवक उससे विवाह कर लेता है और विवाह के पश्चात रोगी होकर मर जाता है, या उसे बैल सींग मार देता है, या आंधी में उस पर पेड़ गिर जाता है, या नदी में डूब जाता है, या युद्ध में मारा जाता है। तब उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। अब वह किसी भी भाई से विवाह करेगी और वह उसे इनकार करेगा तो परेशानी में पड़ जाएगा। अब वह विरोध करे, हमने तो अपने भाई को चेतावनी दी थी कि इस स्त्री से विवाह न करे, मैं तो इससे विवाह नहीं करना चाहता हूँ। वह उसे वृद्धों के सभा में ले जाएगी और यदि वह वहां भी इनकार करे तो वह आगे बढ़कर उसकी जूती लेकर उसके मुंह पर थूक देती है। मेरे मित्रों, इसका अर्थ है कि उसका अपमान हुआ। कोई भी पुरुष इस सीमा तक गिरना नहीं चाहेगा। अतः आप देख सकते हैं कि यह भी एक बड़ा विचित्र नियम है जो निसंतान विधवा को अद्वैत स्थिति में रखता है। इससे उसकी स्थिति सर्वदा बदल जाती है। अब वह किसी भी भाई पर दावा कर सकती है और सच तो यह है कि यह मृतक पति के प्रति उसका कर्तव्य है। मेरी समझ में यह उस युग में परिवार को एकता में रखने के लिए था। इस नियम के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य का एक उत्तरदायित्व हो जाता था कि वह अपने भाई के जीवन साथी का चयन में सहभागी हो, क्योंकि उसके चुनाव का प्रभाव उन पर भी पड़ता था। मेरे मित्रों, यह नियम परमेश्वर की व्यवस्था था और परमेश्वर के मन में इसके निमित्त दो उद्देश्य थे, अधिक भी हो सकते हैं। पहला तो यह था कि वह स्त्री जाति को सुरक्षित रखना चाहता था। अब स्वयं ही समझ सकते हैं कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए और अपनी पत्नी के लिए खेत, दाखबारी और भेड़ छोड़ जाए तो निश्चय ही उसे उनकी देखभाल में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः वह तुरंत ही अपने पति के किसी भाई या निकट कुटुंबी का दावा करेगी और उसे निर्णय लेना ही होगा। यह नियम स्त्री की रक्षा के लिए था। मैंने आलोचना सुनी है कि बाइबल पुरुषों का पक्षपात करती है। मेरे मित्रों, यदि कोई ऐसा कहता है तो स्पष्ट है कि उसने बाइबल सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ी है। यदि कोई यह सोचे कि पुरुष के पास बचने की आशा है तो यहाँ वह संभव नहीं है। मित्रों, इसका दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर भूमि के अधिकारों की भी रक्षा करना चाहता था। परमेश्वर ने इसराइल को प्रतिज्ञा का देश और गोत्र को अपना अपना भूभाग ही नहीं, प्रत्येक परिवार को भूमि का एक भाग दिया था। सबकी अपनी अपनी भूमि थी, जैसा हमने देखा है कि कोई परिवार अपनी भूमि बेच सकता था, परंतु वह जुबली वर्ष में उसके पास लौट आती थी। यह भी संभव था कि पति के मरणोपरांत या मरने के बाद उसकी विधवा किसी परदेशी से विवाह कर ले तो उस परिवार की भूमि या संपत्ति परदेशी के हाथ लग जाएगी। और यही कारण था कि परमेश्वर ने संपदा या धन को परिवार में और राष्ट्र में सुरक्षित रखने के लिए वरन उसी गोत्र में रखने के लिए निकट कुटुंबी से विधवा के पुनर्विवाह का प्रावधान किया था कि संपत्ति स्वामित्व परिवार ही में बनी रहे। मेरे मित्रों, हमें यह नियम बड़ा ही विचित्र लगता है, परंतु इसराइल के लिए यह सुलभ व्यवस्था थी। अब रूत निसंतान विधवा थी और उसके पति की संपदा या संपत्ति उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि वह और नवमी गरीब थे। उसके पास अधिकार था कि वह बोअज का दावा करे, क्योंकि वह उनका निकट कुटुंबी था। नवमी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह कुटुंबी छुड़ाने हारा है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि बोअज भी इस ओर परिश्रम कर रहा था, परंतु उसके हाथ बंधे थे। नियम के अनुसार रूत को पहल करना आवश्यक था, वह उसका दावा करेगी। आगे चलकर हम देखेंगे कि बोअज से पहले एक और निकट कुटुंबी है और यदि रूत चाहे तो उसका दावा कर सकती है। बोअज नहीं जानता था कि वह किसे चाहेगी, अतः उसे प्रतीक्षा करना था। अब क्योंकि रूत पहल नहीं कर रही है, अतः नवमी उससे कहती है, तुम्हें बोअज पर प्रकट करना होगा कि तुम उसे कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाना चाहती हो। मेरे मित्रों, अब हम एक बड़ी विचित्र परंपरा को देखेंगे, अतः उसे समझने के लिए आवश्यक है कि उस युग के खलिहान को समझें। देखिए, परमेश्वर ने इन लोगों के लिए कैसी अद्भुत व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय खेती था, अतः कृषि संबंधित अनेक नियम है। मूसा की व्यवस्था केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, भूमि के लिए भी थी, और विशेष एवं विलक्षण रीति से। यहाँ खलिहान और उस युग की परंपरा के संबंध में नियम थे। खलिहान प्रायः पर्वत के ऊपर होते थे, जिससे कि वायु प्रवाह के द्वारा भूसा उड़ाया जा सके। दाखरस का कुंड इसका सर्वथा विपरीत होता था, वह पहाड़ के नीचे होता था कि अंगूर उठाकर लाने में आसानी हो। मेरे मित्रों, आपको याद होगा कि गिदोन दाख के कुंड में दावनी कर रहा था कि मिद्यानियों को पता न चले, अन्यथा वे उसे लूट लेते। वहीं परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उससे कहा, हे शूरवीर सुरमा, जिसे हम न्यायों की पुस्तक 6:12 में देखते हैं। देखिए, परमेश्वर भी विनोदी स्वभाव रखता है। गिदोन पहाड़ की चोटी की अपेक्षा नीचे दाख के कुंड में मायातुर अर्थात डर से दावनी कर रहा था। आप उसकी हताशा को देख सकते हैं। वह अन्न ऊपर उछालता है और भूसा लौटकर उसी के ऊपर गिरता है, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। मेरे विचार में वह बहुत ही निराश रहा होगा। तभी तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूरवीर सुरमा। गिदोन ने पलट कर देखा होगा कि वह किससे बात कर रहा है। जब उसने देखा कि वहां अन्य कोई नहीं है तो उसने कहा, कौन मैं, मुझे तू सुरमा क्यों कहता है, मैं तो एक कायर मनुष्य हूँ। मेरे मित्रों, वह कायर ही था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह एक कायर को भी काम में ले सकता है, यदि वह समर्पित हो। जब उसने परमेश्वर को समर्पण कर दिया, तब वह केवल 300 निहत्थे मनुष्यों के साथ मिद्यानियों पर विजयी हुआ। मेरे मित्रों, आज हमारे लिए यह कैसे प्रोत्साहन की बात है कि रूत की कहानी न्यायों के युग की है, परंतु उस स्थिति में जब इसराइल परमेश्वर की भक्ति में था। आप स्मरण कीजिए कि नवमी ने मोआब में सुना था कि इसराइल में अकाल अर्थात परमेश्वर का दंड समाप्त हो गया है। संभवतः इसराइल में शांति थी और खलिहान फिर से पहाड़ी पर थे। अब हम यह खलिहान देखते हैं। फर्श चिकनी मिट्टी का स्वच्छ स्थान था और सामान्यतः खलिहान गोलाकार होता था और उसके चारों ओर चट्टानें लगाई जाती थी। वे आज भी वही पुराने विधि काम में लेते हैं। कटने के बाद अन्न खलिहान में लाया जाता था और दोपहर बाद हवा चलती है और कभी कभी मध्य रात्रि तक चलती रहती है। जब तक हवा चलती थी, वे दावनी करते रहते थे। पूले फर्श पर डाल दिए जाते थे और बैल उसे रौंदता था। इसके बाद कर्मी कांटे से उसे हवा में उछालते थे कि भूसा हवा में उड़ जाए और अन्न का दाना फर्श पर गिरे। जब हवा रुक जाती थी तो किसी भी समय सूर्यास्त या रात के 9 या मध्य रात्रि, तब वे धार्मिक उत्सव मनाते थे। मेरे मित्रों, वर्ष के इस समय सब परिवार खलिहान के पास एकत्र होते थे, अर्थात बड़ी संख्या में लोग वहां होते थे। उत्सव समाप्त होने पर पुरुष अन्न के ढेर के पास ही सो जाते थे, क्योंकि खलिहान गोलाकार था और वे अपने सिर गेहूं की ओर और पांव बाहर की ओर रखकर सोते थे। देखने में ऐसा लगता था कि ये तीलियां हैं, या इसलिए कि चोरों से अन्न की रक्षा की जाए। मेरे प्रियो, यह समय अच्छी फसल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने और आनंद मनाने का होता था। इसराइल के अनेक पर्व जैसे पहले फसह का पर्व या पहले फल का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व आदि सब खलियान से ही संबंधित थे। वे विपुल फसल के लिए परमेश्वर की स्तुति में भजन गाते थे। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं कि वे सब वहां पहाड़ पर एकत्र हैं और स्वर्ग की ओर निहारते हुए भजन गा रहे हैं। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, तब ध्यान दीजिए कि उनमें से कितने भजन इस विशेष उत्सव से संबंधित हैं। मित्रों, अब कुटुंबी छुड़ाने हारा विधवा के संदर्भ में और खलिहान का दृश्य मन में बसा करके रखें, क्योंकि हम इसे अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने मूसा की व्यवस्था और रूत और बोअज की कहानी के द्वारा से बहुत सारी नई बातों को सीखा है, और इससे हमें यह प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा छुड़ाने हारा है, जो हमारा मुक्तिदाता है, आज भी मुझसे और आपसे प्रेम करता है ताकि मुझे और आपको बचा ले। मेरे मित्रों, आज हम अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाएं और उससे मांगे कि प्रभु हमें भी हमारे पापों से छुड़ा ले ताकि हम उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे और हम सबकी सहायता करें।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे पराई, इस जहां के रूप निशानी कर देती है तुझसे पराई, छोड़ न कभी प्रभु प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा का।